लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम विश्व में भ्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, हमें अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण मैत्री और साहचर्य में जीने की कृपा प्रदान करें। सभी के लिए हम प्रार्थना करें तथा सबके प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स के जीवन एवं छठा नागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। बेल्जियम के जेसुइट मिशनरी फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स ने अथक परिश्रम एवं त्याग से छठा नागपुर में ख्रिस्त की ज्योति जलाई और यहां के पीड़ित एवं उपेक्षित लोगों को जीने का रास्ता दिखलाया। निराशा और पीड़ा भरे समाज में न्याय, समानता एवं मानव प्रतिष्ठा के मूल्यों को बढ़ावा दिया, जिसके कारण आदिवासी अपनी दयनीय स्थिति से ऊपर उठने लगे। आज हमारा दायित्व है कि हम फादर लेबन्स द्वारा जलाई गई ज्योति को प्रज्वलित रखें और समाज को बेहतर बनाएं। पिछले कार्यक्रम में हमने फादर लेबन्स की बीरू और 12वें यात्रा का विवरण सुना था। इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे कि 12वें में मिशन कार्य किस प्रकार आगे बढ़ा। 12वें में अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग रांची में ही बपतिस्मा प्राप्त कर लिए थे और कुछ लोग बपतिस्मा लेने की तैयारी कर रहे थे। उनके अच्छे स्वभाव, सीखने की उत्सुकता एवं ख्रिस्ते बनने के उत्साह को देखते हुए फादर लेबन्स ने 12वें का दौरा करने की अपनी यात्रा को स्थगित नहीं किया। रांची में कई बार 12वें के प्रतिनिधियों ने उन्हें 12वें आने का निमंत्रण दिया था, किंतु अपनी व्यस्तता के कारण वे पहले वहां नहीं जा पाए थे। यात्रा से पहले 12वें के प्रथम ख्रिस्तियों और ख्रिस्ते बनने के उम्मीदवारों के स्वभाव और धैर्य की जांच की गई, क्योंकि वहां बपतिस्मा देने एवं ख्रिस्ती समुदाय को सुसंगठित करने के लिए कोई भी पुरोहित नहीं जा सके थे। इस बीच फादर लेबन्स ने रांची में देखा कि 12वें के लोगों ने किस प्रकार प्रचारक से प्रार्थना और धर्म की बातों को सीखने में दिलचस्पी एवं साहस का प्रदर्शन किया था। फादर लेबन्स एवं फादर मोटेट हमेशा इन लोगों पर आश्चर्यचकित होते थे और उनके बारे सोचते थे जो 80 या 100 मील की दूरी से सीखने के लिए रांची के डेरा आते थे। वे बाद में घर लौटकर उसे लोगों को भी सिखाते थे। वे अपने आप प्रचारक के समान बन गए थे, जो खुद विश्वास में बढ़ने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी विश्वास में बढ़ने में मदद कर रहे थे। प्रत्येक अपने को ख्रिस्ते पुकारता था अथवा ख्रिस्ते बनने की चाह रखता था। उन्हें देखकर फादर लेबन्स के मन में विचार आने लगा, क्या ये ईमानदार हैं? क्या ये अलौकिक शक्ति से प्रेरित हैं? जो लोग यीशु के पास गए थे, क्या वे स्वर्ग की रोटी के लिए गए थे अथवा शारीरिक भूख मिटाने के लिए? अनभिज्ञ लोगों से किस अलौकिक मकसद की उम्मीद की जा सकती है? किंतु यीशु ख्रिस्त के सहर्ष शिष्य बनने की चाह और धर्म शिक्षा प्राप्त करने का साहस उनमें स्पष्ट दिखाई देता था। जुलाई माह में खुद से बने दो प्रचारकों की मृत्यु ने सभी लोगों को गहराई से प्रभावित किया। दोनों प्रचारकों ने सबसे पहले रांची आकर धर्म शिक्षा ली थी और बपतिस्मा ग्रहण किया था। गांव लौटकर उन्होंने लोगों को हे हमारे पिता और प्रणाम मरियम की विनती सिखलाई थी। जब लोगों ने इन विनतियों को सीख लिया तो उन्होंने कहा कि अब हम भी आपकी तरह विनतियों को सीख लिए हैं। अब आप रांची जाकर दूसरी प्रार्थनाओं को सीख आइए और हमें भी सिखलाइए। इस तरह कई बार रांची जाकर प्रार्थनाओं को सीखने और घर लौटने की यात्रा के दौरान वे कोलेरा महामारी से संक्रमित हो गए और रास्ते में प्रार्थना करते हुए उनकी मौत हो गई। बारवे में अपनी यात्रा से पहले फादर लेबन्स ने 3 प्रचारकों को भेजा जिससे कि वे लोगों को बपतिस्मा के लिए तैयार करें। फादर लेबन 16 अक्टूबर को अपने एक सेवक बर्ट और मिस्टर यंग के साथ लोहरदगा पार करते हुए बारवे पहुंचे। फादर लेबन्स के लिए यह एक शानदार विजय थी। हर जगह उन्हें एक मुक्ति दिलाने वाले के रूप में स्वागत किया गया। सभी ओर से लोग उनसे मुलाकात करने के लिए दौड़ पड़े और बपतिस्मा देने एवं ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाने के लिए आग्रह करने लगे। उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। पुरुष, युवा और बुजुर्ग, बच्चों के साथ माताएं, परिवारों के पिता, पहाड़ी लोग अपने तीर धनुष के साथ गांव की सड़कों में जमा हो गए, जो तुरंत ही एक शोभा यात्रा का रूप ले लिया। फादर लेबन्स एवं उनके 2 साथियों को वहां हर तरह के व्यंजन परोसे गए और उनके ठहरने के लिए पेड़ के नीचे तुरंत एक झोपड़ी का निर्माण किया गया। यात्रा के दौरान हरेक गांव में यही व्यवस्था की गई, किंतु उन्हें वहां भी लोगों की वही पुरानी कहानी सुनने को मिली कि वे जमींदारों से शोषित थे। उनकी कहानियों को सुनने और उनके प्रति सहानुभूति रखने के साथ साथ फादर लेबन्स का मुख्य ध्यान था कि लोग किस तरह बपतिस्मा लेने और धर्म शिक्षा पाने के लिए तैयार थे। वहां उन्होंने लोगों को असाधारण रूप से खुला पाया जो बपतिस्मा लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अतः उन्होंने बच्चों को बपतिस्मा दे दिया। प्रौढ़ लोगों में ईमानदारी की थोड़ी कमी होने के कारण फादर लेबन्स ने कहा कि वे उन्हें बपतिस्मा देने के लिए दूसरी बार आएंगे, किंतु लोग इतने निराश हो गए और बार बार आग्रह करने लगे कि उन्हें भी बपतिस्मा देना पड़ा। बपतिस्मा से पहले उनकी जांच की गई, जिसमें देखा गया कि वे धर्म की मौलिक बातों को जानते हैं अथवा नहीं। 3 प्रचारक जिन्हें 2 माह पहले भेजा गया था, उन्होंने लोगों को अच्छी तरह तैयार किया था। अतः पूरे बारवे में एक साथ लोगों को बपतिस्मा दिया गया। इस तरह बारवे में ख्रिस्ते बनने के लिए लोगों के उत्साह ने फादर लेबन्स को मिशन में बड़ी सफलता एवं खुशी प्रदान की। श्रोताओं, और रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत फादर लेबन्स के जीवन एवं छोटानागपुर में कलीसिया की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक लौटती राहें। लेखक हैं माइकल होजेस। श्रोताओं, समाज में बसे लोग सिर्फ कानून के डर से ही सही रास्ते पर नहीं चलते, बल्कि हमारे लिए सामाजिक बंधन और कुछ मर्यादाएं बनाई गई हैं। मर्यादा में रहने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। जो अपनी मर्यादा की सीमा को लांघ जाता है, उसे जीवन भर पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही पति पत्नी के रिश्ते के लिए भी होता है। अगर पति पत्नी अपनी मर्यादा के अंदर रहेंगे, पति पत्नी के रिश्तों के बीच कभी भी तीसरे को आने नहीं देंगे, तो उनका जीवन खुशहाल बीतेगा, वरना रिश्ता टूटने में वक्त नहीं लगेगा। ईश्वर को साक्षी मानकर किए गए शादी के बंधन कई बार सिर्फ कुछ गलतियों, गलतफहमियों और नासमझियों के कारण टूट जाते हैं, जो सही नहीं है। अपने परिवार को टूटने से बचाएं, अपनी समस्या अपने सच्चे दोस्त से शेयर करें, शायद वह आपकी समस्या को सुलझाने में आपकी मदद कर सके। अपने बुजुर्गों या फैमिली काउंसलिंग केंद्र में जाएं और अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए तो तहे दिल से माफी मांगे या माफी दे दें और फिर नए सिरे से जीवन की शुरुआत करें। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका लौटती राहें।
श्रेया, आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, लंच बॉक्स जल्दी तैयार कर देना।
अब जल्दी क्यों मचा रहे हो, कर तो रही हूँ दिख नहीं रहा है, घर में कोई एक काम ही रहता है क्या मुझे?
मैं अच्छी तरह से बोल रहा हूँ तो तुम इतना अकड़ क्यों रही हो, है? क्या बात है, तुम ठीक से भी बात कर सकती हो?
जिसे जैसी बात समझ आती है उससे वैसे ही और उस जबान में ही बात की जाती है।
तुम्हारी बदतमीजी फिर शुरू हो गई। मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ कि मुझे ऐसा कोई मौका मत देना जिनसे मैं तुम्हारी पिटाई कर बैठूं।
और तुम कर भी क्या सकते हो?
तुम्हारी जबान फिर चलने लगी है, अपनी जबान बंद कर लो मैं कहता हूँ।
तुम तो कहते ही रहो, तुम्हारी सुनता कौन है?
शरीफ औरतें ही अपने पति का कहना सुनती हैं। तुम्हारे जैसी बेशर्म औरतें पति का कहना सुनने के बजाय उससे जबान लड़ाती हैं।
अरे इसमें जबान लड़ाने की क्या बात है, तुम कुछ भी बोलते रहो और मैं चुपचाप सुनती रहूं।
क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना तिल मिला रही हो?
और मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम इतनी गर्मी खा रहे हो?
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मुँह से किसके शब्द तुम्हारी आवाज बनकर निकल रहे हैं।
हाँ हाँ, मैं समीर के शब्द बोल रही हूँ। बोलो अब क्या करना है तुम्हें?
शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक बच्चे की माँ होकर भी तुम 16 साल की लड़की बनती फिरती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बच्चे के बाद भी तुम अपने से 10 साल छोटे कॉलेज स्टूडेंट समीर के साथ इश्कबाजी करती हो।
याद रखना।
अगर अब मुझे तुम्हारे उससे मिलने की खबर मिली तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, समझी तुम?
मैं तो उससे मिलती रहूंगी, तुमसे जो बन पड़े कर लो।
फिर मुँह चलने लगा तुम्हारा फिर? मैंने बता दिया है मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ये सब। नहीं बोलता तो नहीं बोलता, बेवकूफ समझती हो? और मुझे बेवकूफ समझने की भूल मत कर बैठना।
तुम जितना मना करोगे मैं उतना ही और करूंगी, मैं भी देखती हूँ क्या करोगे तुम।
मैं भी डरता नहीं हूँ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा।
ज्यादा उछलो मत, अगर मैंने भी प्रताड़ना और दहेज के केस में तुम्हें ना फंसवा दिया तो मेरा नाम भी श्रेया नहीं, बड़े आए मुझे चमकाने वाले।
तुम्हारे जैसी औरत से तो सिर्फ और सिर्फ मतलब की ही बात करनी चाहिए।
तो मैं ही कौन सा तुमसे बात करने को मरी जाती हूँ,
इस घर में तो टिकना ही मुहाल है।
क्या सोच रहे हैं भैया?
कुछ नहीं आशा।
भैया अब ना आप भाभी के बारे में सोचना छोड़ दो, बस भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन भाभी को जरूर सही लाइन पर भगवान ले आएगा।
क्या पता आशा वह दिन कब आएगा।
इसीलिए तो कह रही हूँ भैया, आशा रखो, एक ना एक दिन वो दिन जरूर आएगा।
मैं तो इस औरत से तंग आ गया हूँ, किस तरह से मेरे ही मुंह पर अपनी अय्याशी की बात स्वीकार करती है।
ये सब आपकी सिधाई ही है भैया, लेकिन अपनी सिधाई को यूं ही बरकरार रखना, आपकी इसी सिधाई से तो यह घर बचा हुआ है, वरना तो कब का बिखर जाता।
बस इसी आशा में कि आज नहीं तो कल तेरी भाभी सुधर जाएगी, मैं उसे सहन कर रहा हूँ। तू घर की फालतू बातों पर ध्यान मत दे, तू तो बस अपनी पढ़ाई कर।
हाँ,
दिल लगा कर।
हाँ हाँ, मैं वही कर रही हूँ भैया।
श्रेया
ओ मोनिका, आओ आओ। अरे बहुत दिनों बाद आई हो, क्या बात है, कहीं बाहर गई थी क्या तुम?
अरे यार तुमने भी एक ही साथ कितने सारे प्रश्न कर डाले, चलो एक एक कर ही उत्तर देती हूँ।
चलो अच्छा बैठो अब।
हाँ मैं बहुत दिनों बाद इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं सचमुच बाहर गई हुई थी। और तुम सुनाओ?
बस सब कुछ बढ़िया चल रहा है अपना तो।
हाँ बताओ तुमने मुझे फोन करके क्यों बुलाया है?
यार पर एक प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा तुमसे अच्छा और कौन मुझे इस समस्या से निकालने वाला होगा।
हाँ तो बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, अगर मैं हल कर सकी तो जरूर हल करूंगी, बताओ क्या समस्या है।
मोनिका तुम तो जानती हो कि तुम्हारे जियाजी का व्यवहार मुझे जरा भी पसंद नहीं है, हर बात में वो अपनी चलाते रहते हैं, इसलिए जरा मेरी उनसे बनती नहीं है, पता है ना तुम्हें। इसी दौरान न जाने कब इसी बिल्डिंग में ऊपर रहने वाले कॉलेज स्टूडेंट समीर की ओर मैं आकर्षित हो गई।
श्रेया, पति से अनबन होने का मतलब ये तो नहीं होता कि पत्नी किसी और के साथ दिल लगा ले।
समीर मुझसे 10 साल छोटा है और अब हालात ये हो गए हैं कि मैं समीर के बिना रह नहीं सकती हूँ यार।
मनीष जिया जी को यह बात पता है?
तुम्हें तो मालूम ही है कि शुरू से ही मैं कोई भी काम छिपा कर नहीं करती हूँ।
लेकिन श्रेया, गलत काम को खुलकर करने से भी गलत काम सही नहीं हो जाता, उल्टा वह और गलत हो जाता है, जैसे चोरी और सीना चोरी।
अरे इसमें गलत क्या है मोनिका, मुझे मनीष नहीं समीर पसंद है, मुझसे 10 साल छोटा हुआ तो क्या हुआ, और वैसे भी प्यार में कोई छोटी बड़ी उम्र नहीं देखी जाती। बस
अगर हम समाज से परे बहुत कुछ देखने लगे तो शहर में जंगल का राज चलने लग जाएगा। अरे पहली बात तो यह है कि अब तुम न केवल शादीशुदा हो बल्कि एक बच्चे की माँ भी हो, तो अब तुम्हें यह प्रेम और प्यार वगैरह शोभा नहीं देता। हाँ, अगर प्यार करना ही है तो जीजा जी से करो ना, प्यार से उन्हें अपना बनाओ।
हाँ, भले ही वो मुझे पसंद हो या ना हो, अपना बनाओ।
अरे किसी को पसंद करने के कुछ मापदंड होते हैं, उन्हें अपनाओ और फिर जीजा जी ही तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य है।
मोनिका, समीर तो मुझे अपनाने के लिए भी तैयार है, और वो तो मुझे इतना चाहता है कि वो मनीष को जान से मारने की बात भी करता है।
मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिमाग का दिवाला यहाँ तक पिट चुका है, तुम इतनी आसानी से अपने प्रेमी द्वारा अपने पति को मार देने की बात कर रही हो। हद हो गई तुम्हारी बेशर्मी की, वह तुम्हें तलाक के लिए उकसाता है, पति की हत्या के लिए उकसाता है, और तुम?
मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ
जी,
लेकिन समीर को नहीं छोड़ सकती हूँ।
श्रेया, मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूँ, वह तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, वह केवल तुम्हारे पैसे और तुम्हारे शरीर के पीछे है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके पास तुम्हारे साथ संबंध निभाने की कोई मजबूरी नहीं है, जब उसका तुमसे जी भर जाएगा तब वह तुम्हें छोड़कर चल देगा।
मगर मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना।
अरे तुम्हारा प्यार भी महज एक शारीरिक आकर्षण ही है। मुझे ये बताओ, जब तुम अपने पति की ही नहीं हुई तब समीर की क्या होगी? कल कोई और मिलेगा तो समीर को छोड़कर उसके साथ हो जाओगी।
हाँ मोनिका, लगता है तुम ठीक कह रही हो। मुझे अपने आप पर काबू रखकर नियम संयम और एक विवाहिता की मर्यादा में रहना चाहिए।
श्रेया, इस हरकत से तुम केवल अपनी, अपने पति की और समीर की, यानी कि 3 जिंदगियां बर्बाद कर रही हो। समीर को भी अच्छी राह दिखाने की बजाय उसे गुमराह कर रही हो।
हाँ मोनिका, तुम सब कुछ सच कह रही हो।
एक दिन तुम्हारे इस खेल का अंजाम बहुत बुरा होगा, जब तुम्हारे पति के घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे और तुम्हारा प्रेमी तुम्हें अपनाने की स्थिति में नहीं होगा। तब क्या करोगी तुम? ऐसे में कहाँ जाओगी? तब ना घर की रहोगी ना घाट की, सोच लो जरा।
नहीं मोनिका, मैंने सोच लिया है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं समीर से सारे संबंध तोड़ लूंगी और मनीष से अपनी गलती के लिए माफी मांग लूंगी। सचमुच मनीष, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ कर देना, मैं सचमुच अपनी राह से भटक गई थी।
अब डरने की कोई बात नहीं है श्रेया, अब तो सारी लौटती राहें तुम्हारे घर तक ही जाती हैं। बाइबल में लिखा है, जिन्हें ईश्वर ने जोड़ दिया है उन्हें मनुष्य अलग ना करे।
लौटती राहें, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे समता बोरेकर, अर्पना सिंह, नलिनी गहलोत और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।